नकुल राजवंश ने नायरा के साथ मिलकर अभिमन्यु और इशिका के रिश्ते को तोड़ने की एक बहुत बड़ी साजिश रची थी। उसने हॉस्पिटल का वीडियो वायरल करवा दिया था, जिसके बाद सब इशिका और अभिमन्यु को भला बुरा कह रहे थे। हालांकि टॉपिक को दबा दिया गया था, लेकिन काफी लोग इस बारे में जान चुके थे। वहीं रात के वक्त अभिमन्यु हॉस्पिटल से वापस आया तो वो गाड़ी से बाहर निकलने के बजाय गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ था। उसके कानों में बार बार डॉक्टर की आवाज़ गूंज रही थी, जो इनडायरेक्टली उसे ही ताना मार रहे थे, क्योंकि उसने प्रणाली की देखभाल करने से मना कर दिया था। अभिमन्यु कभी स्मोकिंग नहीं करता था। उसने थोड़े दिन पहले केशव सिंघानिया के लिए सिगरेट के पैकेट्स मंगवाए थे, जो कि उसके गाड़ी में ही रखे हुए थे। अभिमन्यु ने एक सिगरेट निकाली और स्मोक करना शुरू कर दिया था। उसकी आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थीं। उसे इस हाल में छोड़ भी नहीं सकता। उसने एक बार मेरी हेल्प की थी, वो एहसान इतना बड़ा है कि चाहकर भी उसे इस हालत में अकेले छोड़ने का मन नहीं करता। मुझे सिचुएशन को संभालना ही होगा, इससे पहले कि इसका असर मेरे और इशिका के रिश्ते पर पड़े, अभिमन्यु ने खुद को सख्त करके जवाब दिया और फिर गाड़ी से बाहर निकला। उसने गाड़ी से बाहर आते ही सिगरेट को क्रश करके जमीन पर फेंक दिया था। अभिमन्यु वसुधा के विला में पहुंचा, जहां बिल्कुल शांति छाई हुई थी। वो सीधा अपने कमरे में गया तो उसने देखा रूम की लाइट डिम थी और इशिका सोफे पर बैठी हुई थी। अभिमन्यु उसके पास गया तो इशिका अचानक से खड़ी हुई और भारी आवाज में बोली, हम तलाक ले लेते हैं। इशिका की बात सुनकर अभिमन्यु के चेहरे का रंग उड़ गया था। वहीं दूसरी तरफ डिलीवरी वाला शाम के वक्त इशिका के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच चुका था। वो टाउन छोटा जरूर था, लेकिन इशिका ने जो एड्रेस लिखा था वो घर किसी का पुश्तैनी घर था, जो एक बड़ी सी हवेली थी। डिलीवरी वाले ने एक नज़र घर को देखा और फिर वहां आगे खड़े सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, क्या यहां कोई घमंडी बंदर रहता है? ये कैसा नाम हुआ, घमंडी बंदर? यहां कोई घमंडी बंदर नाम का शख्स नहीं रहता है, कहीं और जाकर पूछो, सिक्योरिटी गार्ड ने रूखे तरीके से जवाब दिया। इशिका एक जमाने में उसे डिलीवरी वाले की सीनियर रह चुकी थी। उसने उसे वादा किया था कि वो उसे पहुंचाकर ही दम लेगा। सिक्योरिटी गार्ड के मना करने के बावजूद डिलीवरी वाला वहां पर जोर से चिल्लाकर बोला, घमंडी बंदर, तुम्हारे लिए पार्सल आया है, प्लीज जल्दी से बाहर आ जाओ, ये आदमी मुझे अंदर नहीं आने दे रहा। घमंडी बंदर, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? दिग्विजय राजवंश इस वक्त अपने घर पर पहुंचे थे। उसने डिलीवरी वाले की आवाज सुनी तो वो चौंक गए। वो जल्दी से उसके पास आकर बोले, तुमने अभी अभी किसका नाम लिया? सिक्योरिटी गार्ड ने सफाई देते हुए कहा, ये पार्सल यहाँ के लिए नहीं है, इसका कहना है कि ये किसी घमंडी बंदर के लिए है, लेकिन यहाँ तो कोई इस नाम का शख्स रहता ही नहीं है, मेरे मना करने के बावजूद भी ये यहाँ से जाने के बजाय शोर मचा रहा है। सिक्योरिटी गार्ड की बातें सुनकर दिग्विजय की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उन्होंने जल्दी से वापस पूछा, किसके नाम? घमंडी बंदर के नाम से है, डिलीवरी वाले ने जवाब दिया। दिग्विजय के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो जल्दी से बोले, तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो, हाँ, इस घर में इस नाम का एक शख्स रहता था। दिग्विजय को आज भी अच्छे से याद था कि अभिमन्यु जब वापस आया था तो वो बार बार दरवाजे पर आता था और किसी के लेटर का इंतजार करता था। इसके बाद जब उसे अब्रॉड भेज दिया गया तब भी वो कॉल करके लेटर के बारे में पूछता रहता था। सालों से जब कोई भी लेटर उसके नाम से नहीं आया तो उसने पूछना भी बंद कर दिया था। दिग्विजय ने डिलीवरी वाले के हाथ से पार्सल लिया और फिर अपने ड्राइवर से कहा, तुम्हें एक बार फिर से राजवंश विला जाना होगा और इसे अभिमन्यु को ही देना है। दिग्विजय कुछ पल रुके, क्योंकि उन्हें याद आया कि राजवंश फैमिली आजकल अभिमन्यु के खिलाफ कुछ ज्यादा ही साजिशें कर रही थी। उन्होंने ड्राइवर को सख्ती से कहा, याद रखना, ये तुम्हें अभिमन्यु के हाथ में ही देना है, किसी और को मत देना इसे। डिलीवरी वाले को भी इशिका के इंस्ट्रक्शंस याद आ गए थे। उसने भी यही कहा था कि इसमें एक कीमती अंगूठी है, तो ये जिसके लिए है उसके हाथ में देना जरूरी है। डिलीवरी वाले ने तुरंत कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। इसी के साथ वो दोनों वहां से राजवंश विला की तरफ निकल गए थे। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु के कमरे में इशिका और अभिमन्यु एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे, जहां इशिका ने अभिमन्यु से तलाक लेने की बात कही थी। हालांकि इशिका के इस फैसले से अभिमन्यु बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। वो एक इंडिपेंडेंट वुमन थी। इशिका पिछले दिनों से अभिमन्यु की वजह से कुछ ज्यादा ही चीजें सहन कर रही थी, उसके फैमिली डिस्प्यूट से लेकर उसकी पब्लिक इमेज पर बात बनाई थी। अभिमन्यु उसे मना करना चाहता था, पर मानो उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। वो उससे थोड़ा और टाइम मांगना चाहता था ताकि उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक कर सके। अभिमन्यु कुछ बोलता उससे पहले इशिका ने आगे कहा, देखो, मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए प्रेशराइज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं हर एक पहलू के बारे में गौर से सोच चुकी हूँ, इसमें हम दोनों की भलाई है। अभिमन्यु की आंखें नम होने लगी थीं। उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए अपनी मुट्ठी को कस के बंद कर दिया था। अभिमन्यु ने काफी हिम्मत करके कहा, इशिका, मैं। इशिका ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, खुद को दोष मत दो, क्योंकि तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुमने मुझे चुना, लेकिन दूसरा सच ये भी है कि तुम उसे इस तरह मरते हुए नहीं देख सकते हो। मैं देख सकता हूँ, अभिमन्यु ने बिना सोचे समझे कहा। अभी तुम्हें ऐसा लग रहा है,
लेकिन अगर उसे गलती से भी कुछ हो गया तो क्या करोगे तुम अभिमन्यु? इशिका ने सीधे सीधे कहा। हालांकि ये फैसला उसके लिए भी आसान नहीं था। अभिमन्यु चुप हो गया था तो इशिका ने आगे कहा, उसने तुम्हारी जान बचाई है तो तुम भी उसकी जान बचाने की कोशिश करोगे। अगर उसे कुछ हो गया तो तुम हमेशा गिल्ट में रहोगे कि वो तुम्हारी वजह से हुआ है। अभिमन्यु कुछ बोल नहीं रहा था। ऊपर से कमरे की लाइट डिम थी तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे। इशिका देख नहीं पा रही थी लेकिन अभिमन्यु की आंखें नम हो रही थीं। वो बहुत लाचार महसूस कर रहा था। इशिका ने उसे समझाते हुए कहा, मैं जानती हूँ ये सबसे बुरी फीलिंग होती है, तुम्हें भी बहुत बुरा लग रहा होगा, मुझे भी लगा था, पर हमें प्रैक्टिकल होकर सोचने की जरूरत है। इशिका उसकी हालत समझ सकती थी। उसने भी सिंघानिया हाउस इसीलिए छोड़ा था ताकि उसकी वजह से आदर्श और राधिका का रिश्ता ना बिगड़े। अभिमन्यु भी कुछ हद तक उसकी तरह ही था। बाहर से वो कितना भी सख्त क्यों ना दिखे लेकिन अंदर ही अंदर उसे अपने घर वालों और रिश्तों की बहुत फिक्र थी। ऐसे में प्रणाली को कुछ हो जाता तो वो उम्र भर खुद को माफ नहीं कर पाता। इशिका के इतने समझाने के बावजूद अभिमन्यु उसकी तरफ बढ़ा और कांपती आवाज में कहा, लेकिन मैं तुम्हें खोने का दर्द भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इशिका, एक दर्द से बचाने के लिए दूसरा दर्द क्यों दे रही हो तुम मुझे? इशिका ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और फिर खुद को मजबूत करके कहा, तुम तो इतने प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हो, अब आज बच्चों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? तुम खुद अच्छे से जानते हो कि हम दोनों के लिए यही बेहतर है, प्लीज, अभिमन्यु ने अटकते हुए कहा। अभिमन्यु की आगे कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी तभी इशिका उसके पास आई और उसे गले लगा लिया था। अभिमन्यु ने उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया था। इशिका ने उसे सहलाते हुए कहा, तुम इस तरह कमजोर मत हो, मैंने हमेशा से तुम्हें दूसरों को ऑर्डर देते हुए ही देखा है। बोलते हुए इशिका कुछ पल रुकी और बोली, वैसे भी हमारी शादी शुरुआत से ही अजीब रही है, ये कब हुई कैसे हुई हम खुद भी ठीक से नहीं जानते। इसमें हमारी मर्जी नहीं, इसके पीछे किसी की साजिश छुपी हुई है, जब हम तलाक लेंगे तब देखना वो भी सामने आ जाएगा।
इतना कहकर इशिका ने बहुत मुश्किल से खुद को अभिमन्यु से अलग किया था। उसने अभिमन्यु का हाथ सहला कर कहा, कल कोर्ट में मिलते हैं मिस्टर राजवंश, मुझे इंतजार मत करवाना, वैसे भी तुम्हारा इंतजार ही करती रहती हूँ, तुम कभी नहीं आते हो। इशिका ने उसके मूड को लाइट करने के लिए जबरदस्ती की मुस्कुराहट दी। अपनी बात कहकर इशिका दूसरी तरफ पलट गई और कमरे से बाहर जाने लगी। तभी अभिमन्यु ने उसका हाथ कस के पकड़ लिया था। इशिका का चेहरा दूसरी तरफ था। अभिमन्यु उसके पास आया और उसे पीछे से गले लगा लिया था। दोनों बिल्कुल शांत थे और अभिमन्यु लगभग एक घंटे तक उसे वैसे ही पकड़े खड़ा रहा। जाने दो अभिमन्यु, खुद को तकलीफ मत दो, इशिका ने कुछ कदम आगे आकर कहा तो अभिमन्यु ने उसे छोड़ दिया था। अभिमन्यु के सामने इशिका कितना भी मजबूत रहने का दिखावा क्यों ना करे लेकिन कमरे से बाहर निकलते ही उसकी आंखों में आंसू थे। वो जल्दी से पास वाले कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद करके जोर जोर से रोने लगी। वहीं ऐसा ही हाल कुछ अभिमन्यु का था। इशिका के जाते ही उसकी आंखों में आंसू थे। इशिका जल्दी से ब्लैंकेट के अंदर खुद को कवर कर दिया ताकि कोई उसे रोते हुए ना देखे। वो मन ही मन बोली, ये क्या हो रहा है, लाइफ पहले से ही इतनी मुश्किल थी, अब जब सब सही होने लगा, अभिमन्यु और माँ मुझे मिल गईं, तब हमारे साथ ये सब हो रहा है। अगर पहले ही सब पता होता तो कभी उसके करीब नहीं जाती, मेरी ही गलती है जो मुझे उससे प्यार हो गया। इस सारे सिलसिले को रोकने के लिए इशिका को तलाक की बात कहनी पड़ी। वो जानती थी कि अभिमन्यु कभी कितनी भी मुसीबत में आ जाए लेकिन उसे तकलीफ नहीं देगा। उसे तकलीफ से बचाने के लिए इशिका ने ये डिसीजन लिया था। तो वहीं दूसरी तरफ अपने कमरे के अंदर अभिमन्यु जैसे वहीं पर जम गया हो। जब उसे लगा कि इशिका वापस नहीं आएगी तब गुस्से में उसने अपना ब्लेजर उतार कर फेंका और बाहर घूमने चला गया। बाहर थोड़ी ठंड थी। ऐसे लग रहा था जैसे अभिमन्यु इशिका से दूर होने की तकलीफ से खुद को बचाने के लिए खुद को ही तकलीफ देना चाहता था। उसने सिगरेट का पैकेट निकाला और खांसते हुए स्मोक करने लगा। उसकी आंखों से पानी बह रहा था फिर भी वो नहीं रुका। उसने बाहर आकर चेक भी किया था। इशिका के कमरे की लाइट बंद थी तो उसे लगा कि इशिका सो गई है। अगली सुबह इशिका की आंख खुली। हालांकि उसे ठीक से नींद नहीं आई थी क्योंकि बाहर से खांसने की आवाज आ रही थी। इशिका अपने कमरे से बाहर आई। उस वक्त अभिमन्यु ने कमरे का दरवाजा खोला था। उन दोनों की ही आंखें लाल थीं। इशिका ने अपने इमोशंस को काबू किया और हल्का मुस्कुराते हुए अभिमन्यु से कहा, गुड मॉर्निंग, वर्स्ट मॉर्निंग, अभिमन्यु ने गुस्से में जवाब दिया। दोनों ही तैयार होकर बाहर निकले थे और कल की रात जैसे गुजरी थी उसके बाद में भूख लगने का तो चांस ही नहीं था। इशिका ने गहरी सांस लेकर अभिमन्यु से कहा, कोर्ट चले? अभिमन्यु ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया था। वो बाहर जाने के लिए बढ़ गया। इशिका उसके पीछे जा रही थी। वहीं पास खड़ी निवेदिता ने उनकी बातें सुन ली थी। वो जल्दी से दौड़कर वसुधा के पास जाकर बोली, दादी मुझे सर और मैडम के बीच कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उनके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स थे और वो कोर्ट जाने की बात कर रहे थे। मुझे लगता है वो दोनों तलाक लेने के लिए जा रहे हैं।
उसकी बात सुनकर वसुधा ने अपना सीना थाम लिया था। उन्हें एक बड़ा झटका सा लगा। वसुधा ही एक ऐसी शख्स थी जो उनके रिश्ते को हर हाल में बचा कर रखना चाहती थी।